दिन भर तारीख 22 अप्रैल दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक, हरीश रावत रहे सिर्फ एक दिन के मुख्यमंत्री।
27 तारीख तक चीफ मिनिस्टर या पूरे कैबिनेट को कोई अख्तियार नहीं है कोई डिसीजन लेने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ना तो वो चीफ मिनिस्टर है ना कोई कैबिनेट।
उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं बताएंगे आपको। विवेचना में सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रहे एस के मिश्रा की यादें।
कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स गुलमर्ग में किडनैप हो गए थे, तो स्वीडिश एम्बेसडर मेरे पास आया, मैं ले गया चंद्रशेखर के पास, नवाज शरीफ से बात करते, कहते भाई जान वहाँ बैठे बैठे क्या बदमाशी कर रहे हो।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने की नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हो गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह कहते हुए इस फैसले का स्वागत किया है कि इस आदेश से पर्दे के पीछे किसी तरह से बहुमत जुटाकर जनता के ऊपर एक अनैतिक सरकार थोपने की कोशिशों पर विराम लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के फामला गांव में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार मारे गए अधिकतर लोग मजदूर थे। बचावकर्मी अभी भी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। ये हादसा आज सुबह तब हुआ जब पहाड़ का मलबा मजदूरों के अस्थायी डेरे के ऊपर आ गिरा। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसे नए सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि नाइजीरिया की सेना ने उत्तरी शहर जारिया में बीते साल सामूहिक रूप से लोगों की हत्याएं की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अधिकारी डोंटेला रोवेरा का कहना है, ये पिछले महीने की ही बात है जब सरकार के एक अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने 347 लाशों को आधी रात के वक्त दफनाया था। मैं ऐसे कई परिवारों से मिली हूं जो ये जानने के लिए बेताब हैं कि उनके परिजनों का शव आखिर कहां है। इस मामले में इतनी लीपापोती की गई है कि यकीन नहीं होता। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अधिकारी डोंटेला रोवेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए लगभग 170 देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में पेरिस समझौते पर दस्तखत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि पहले दिन बड़ी संख्या में दस्तखत होने से तमाम देश अपनी अपनी संसद में पेरिस समझौते के अनुमोदन के लिए प्रेरित होंगे, जिससे इस समझौते को जल्द से जल्द लागू कराने में मदद मिलेगी। इस समझौते के तहत देशों को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य स्वयं तय करने हैं। ब्रिटेन का दौरा कर रहे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि ब्रिटेन यदि यूरोपीय संघ के साथ बना रहता है तो चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में उसकी क्षमता कहीं अधिक प्रभावी होगी। डेली टेलीग्राफ अखबार में बराक ओबामा ने कहा है कि यूरोपीय संघ में रहने से ब्रिटेन का असर पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। ब्रिटेन में जून में जनमत संग्रह होने वाला है जिसमें तय होगा कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहेगा या नहीं। बराक ओबामा के बयान की उन लोगों ने आलोचना की है जो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने की पैरवी कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। इराकी पुलिस का कहना है कि ये हमला जुमे की नमाज के वक्त किया गया जिसमें कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट पर इस हमले का शक किया जा रहा है जो शिया इलाकों को नियमित रूप से निशाना बनाता रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। एक दिन पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस उत्तराखंड राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाया था उसी आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक रोक लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि कल हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे और आज वो नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है जो कि अगली सुनवाई यानी कि 27 तारीख तक जारी रहेगा। इससे पहले आज केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र सरकार का तर्क था कि फैसले की प्रति अभी तक किसी को नहीं मिली। सबसे पहले सुनिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा।
कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक। उत्तरांचल हाईकोर्ट का जजमेंट 26 तारीख तक हर पार्टी को दिया जाएगा और 27 को पूरी सुनवाई आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सारे मुद्दे सुने, ये भी सुना कि जजमेंट की कॉपी नहीं है। आज की तारीख के बाद 27 तारीख तक चीफ मिनिस्टर या पूरे कैबिनेट को कोई अख्तियार नहीं है कोई डिसीजन लेने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ना तो वो चीफ मिनिस्टर है ना कोई कैबिनेट। फ्लोर टेस्ट 29 तारीख, फ्लोर टेस्ट तो हियरिंग के बाद होगा 27 को, तो हम उसको स्टे क्यों मांगे।
ये थे मुकुल रोहतगी जो कि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने अदालत से आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द फैसला सुना दें, क्योंकि राज्य में विकास के कई काम अटके हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब आखिरी लड़ाई तो जनता की अदालत में ही होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी खेमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अचानक गतिशील सा दिखने लगा है। राज्य में सरकार बनाने की जुगत को उसे अब शायद कोई रास्ता मिलता हुआ दिखने लगा है। सुनिए देहरादून में क्या कुछ घटा शिव जोशी की रिपोर्ट में।
नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्या लगाया, कांग्रेस की कुछ घंटों की खुशी मायूसी में बदल गई। सुबह तक जहां जश्न-ओ-गुबार था और दोपहर तक सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सत्ता की गहमा गहमी फिर शुरू हो चुकी थी, कैबिनेट की बैठकें और ताबड़तोड़ फैसले किए जा चुके थे, शाम होते होते उन जगहों पर सन्नाटा पसर गया। लाव लश्कर गाड़ी घोड़े फिर किनारे लग गए, फैसले फाइलों में ही वापस अटक गए, सत्ता की कुंजी फिर से राज्यपाल के पास चली गई और कोर्ट के आदेश से बहाल सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत चंद घंटों बाद एक बार फिर निवर्तमान हो गए। हरीश रावत जब मीडिया को प्रतिक्रिया देने आए तो उनके चेहरे और आवाज में पसरी थकान, उदासी और खिन्नता छिपी नहीं रही।
एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैं कह सकता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले का उच्चतम न्यायालय फैसला करे। एक और अच्छी बात जो कही गई है, राष्ट्रपति शासन को मिडवे जब तक कोर्ट फाइनली नहीं सुन लेती है सुप्रीम कोर्ट तब तक रिवोक नहीं किया जा सकता। हमारे खेमे में कोई मायूसी नहीं है, हम सब एकजुट हैं और हमें पूरा भरोसा है।
अदालती आदेशों के बीच सरकार की फजीहत से जाहिर है बीजेपी खेमे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो वे नेता हैं जो एक दौर में कांग्रेस के साथ थे और अब बीजेपी के पाले में खड़े हैं। ऐसे ही एक सीनियर नेता हैं सतपाल महाराज।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उचित फैसला दिया है इस प्रकार से, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस में गिर चुकी है और गिरी भी सरकार से कभी ये नहीं कहा जाता कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए।
इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले से उत्साहित कांग्रेस आलाकमान ने आज सुबह पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी अंबिका सोनी को देहरादून रवाना कर दिया था। उनके साथ बैठक में पार्टी के 27 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय, बीएसपी के 2 और यूकेडी के 1 विधायक को भी बुलाया गया था। ये बैठक चल ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आदेश ने कांग्रेसियों की वही काटो तो खून नहीं की हालत कर दी जो 24 घंटे पहले बीजेपी की थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो भी अंतिम फैसला दे, हर सूरत में सदन में शक्ति परीक्षण अब तय नजर आता है। अब सवाल यह है कि पहला मौका कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को। दोनों पक्षों के लिए पेंच यही है कि 9 बागियों की सदस्यता बहाल रखी जाती है या निरस्त ही मानी जाती है। इस बीच उत्तराखंड में ज्यादातर आम लोग इस घटनाक्रम से हैरान परेशान हैं। इस बात को लेकर आम लोगों में गहरी निराशा भी है कि कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक झगड़े और वर्चस्व की होड़ में उनके छोटे से राज्य की कैसी दुर्दशा हो रही है। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
तो अदालत के इस आदेश के बाद इस तरह से हरीश रावत एक दिन के मुख्यमंत्री रहे और फिर से वो निवर्तमान मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बड़ा तर्क ये भी था कि हाईकोर्ट के फैसले की प्रति अभी किसी को नहीं मिली है। अदालत के इस फैसले के मायने क्या है और इसका उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर होगा, अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में इसका हम विश्लेषण आपको सुनाएंगे। और आपको बता दें कि कल BBC इंडिया बोल में यही है चर्चा का मुद्दा।
BBC इंडिया बोल।
जनता की चुनी सरकारें गिराने के लिए धारा 356 का इस्तेमाल क्यों हो? अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई और फिर केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत बताया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। क्या ऐसे विवाद संघीय ढांचे को कमजोर करते हैं? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। चीन के बाहर रहने वाले वीगरों के एक संगठन विश्व वीगर कांग्रेस के डॉल्कन ईसा ने कहा है कि वो भारत तभी आएंगे जब उन्हें भारत सरकार से लिखित में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। अमेरिका की गैर सरकारी संस्था धर्मशाला में 28 अप्रैल से 1 मई तक चीन के विभिन्न गुटों का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। डॉल्कन ईसा को भी इस संगठन से निमंत्रण मिला है, लेकिन चीन डॉल्कन ईसा को आतंकवादी मानता है। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
28 अप्रैल से 1 मई तक धर्मशाला में होने वाले सम्मेलन का मकसद चीन के बौद्ध, वीगर, दक्षिण मंगोलियाई और अन्य धार्मिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। अमरीकी आयोजक संस्था सिटीजन पावर फॉर चाइना की यांग चियानली 1989 के तियानमन स्क्वायर प्रदर्शनों में शामिल थी। डॉल्कन ईसा को भी इस सम्मेलन में आने का निमंत्रण मिला है। जर्मनी के शहर म्यूनिक से फोन पर डॉल्कन ईसा ने बीबीसी को बताया, डॉल्कन ईसा कह रहे थे कि उनका नाम इंटरपोल की सूची में है जिससे पूर्व में उन्हें समस्याएं आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि भारत आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें यात्रा से पहले अपनी सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। डॉल्कन ईसा ने बताया कि वो विदेश मंत्रालय और जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें अनुकूल जवाब मिलता है तब वो भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना रोकटोक के कहीं भी जाने की आजादी मिलनी चाहिए। चीन डॉल्कन ईसा को आतंकवादी मानता है और उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार डॉल्कन ईसा की प्रस्तावित भारत यात्रा पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉल्कन आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ इंटरपोल और चीन की पुलिस का रेड नोटिस है। सभी देशों का कर्तव्य है कि उन्हें सजा दी जाए। उधर खुद को शांतिप्रिय बताने वाले डॉल्कन इन आरोपों से इनकार करते हैं। डॉल्कन को भारत आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल चुका है, लेकिन वो सोमवार तक अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा पर आखिरी फैसला लेंगे। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूप ने धर्मशाला के सम्मेलन पर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि वो इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चीन के सुदूर पश्चिम के शिनचियांग इलाके में प्रशासन और स्थानीय वीगर लोगों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। कई लोग चीन पर इस इलाके में कथित मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हैं। इस इलाके को बीच बीच में स्वायत्तता मिलती रही है और एक मौका ऐसा भी आया जब इसे स्वतंत्रता भी मिल गई थी, लेकिन अब जिस इलाके को शिनचियांग कहा जाता है वहां 18वीं शताब्दी से चीन का शासन था। 1949 में थोड़े समय तक ईस्ट तुर्किस्तान नाम के राष्ट्र की घोषणा हुई, लेकिन ये स्वतंत्रता ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाई। बाद में शिनचियांग आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट चीन का हिस्सा बन गया। भारत से अपनी उम्मीदों पर डॉल्कन ईसा ने कहा, डॉल्कन ईसा कह रहे थे कि भारत की जिम्मेदारी है कि वो चीन को लोकतंत्र सिखाए, क्योंकि वीगर उनके पड़ोसी हैं। भारत ने इतने सालों तक तिब्बत मामले का समर्थन किया है और भारत की जिम्मेदारी है कि वो वीगरों के मानवाधिकारों की रक्षा करे। ये थे डॉल्कन ईसा के शब्द। चीन और पाकिस्तान के नजदीकी संबंधों पर डॉल्कन ईसा ने कहा कि पाकिस्तान चीन के प्रांत की तरह है। चीन में तिब्बतियों, वीगरों आदि पर कथित अत्याचार में पाकिस्तान एक पार्टनर की तरह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद को इस्लामी देश कहता है, लेकिन वो ये नहीं मानते, क्योंकि एक इस्लामी भाई को दूसरे की मदद करनी चाहिए थी। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि भारत उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ कर रहा है। चीन सरकार का कहना है कि डॉल्कन ईसा ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन डॉल्कन इससे इनकार करते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डॉल्कन वर्ष 2003 से चीन की मोस्ट वांटेड सूची में हैं। डॉल्कन ईसा ने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर और पूर्वी तुर्किस्तान में स्थितियां अलग हैं, क्योंकि कश्मीर में, उनके शब्दों में, लोगों को अपनी बात कहने, इकट्ठा होने की आज़ादी है। कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में है, लेकिन चीन पूर्वी तुर्किस्तान में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोक देता है। विनीत खरे, बीबीसी, दिल्ली।
तो चीन के बाहर रहने वाले वीगरों के एक संगठन ने विश्व वीगर कांग्रेस के डॉल्कन ईसा ने कहा है कि वो भारत तभी आएंगे जब भारत सरकार उन्हें लिखित में सुरक्षा की गारंटी दे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रहे एस के मिश्रा की किताब प्रकाशित हुई है, फ्लाइंग इन हाई विंड्स। इसमें उन्होंने कई बड़ी शख्सियतों जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, बंसीलाल, देवीलाल, एम एफ हुसैन और संजय गांधी के साथ अपने पुराने अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने इस किताब में 70 और 80 के दशक में कई घटनाओं पर नजर दौड़ाई है जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं इस बहुचर्चित किताब पर।
अपने पूरे करियर के दौरान शशिकांत मिश्रा ऊंची हवाओं में ही उड़े, कभी हवा के साथ तो कभी हवा के खिलाफ। वो हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव रहे जिसमें बंसीलाल और देवीलाल भी शामिल थे, जो न सिर्फ मजबूत शख्सियतों के मालिक थे बल्कि एक दूसरे के धुर विरोधी भी थे। आईएएस में आने से पहले वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे और अमरनाथ झा हॉस्टल में रहते थे। आईएएस में मिश्रा की शुरुआत में ही उन्हें शर्मसार होना पड़ा जब मेटकाल्फ हाउस में ट्रेनिंग के लिए पहुंचते ही उन्होंने वहां घूम रहे प्रिंसिपल राधाकृष्णन से अपना सामान उठाने के लिए कहा।
जब मैं टैक्सी उतरा तो वाज फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ आईएएस में आ गए। तो एक शख्स घूम रहे थे अपना लुंगी पहने हुए, कुर्ता कमीज, तो मैंने उसको बोलाया इधर आ जाओ। वो आ गए, हमने कहा सामान वहाँ बैरक्स थे, इसके बाद रख दिया। मैंने 1 रुपये टिप दिया, उनका सलाम साहब। फिर इसके बाद नहा धो करके फिर गए, मैंने कहा प्रिंसिपल सर पे कॉल करना चाहिए, तो मैं गया देखा वही शख्स प्रिंसिपल के चेयर में बैठे हुए थे। तो काफ़ी, और वो हर एक बैच को वो किस्सा सुनाते थे हमारे साथ ये हुआ।
आम लोगों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की छवि एक रूखे, अभद्र और अखड़ राजनीतिज्ञ की हुआ करती थी, बल्कि आज भी है। उनके प्रधान सचिव होने के नाते एस के मिश्रा को जितना नजदीक से बंसीलाल को देखने का मौका मिला था उतना कम लोगों को मिला है। मिश्रा का मानना है कि बंसीलाल का एक सौम्य पक्ष भी हुआ करता था जिस पर कम लोगों की नजर गई है।
जब बंसीलाल ने चार्ज अस्यूम किया चीफ मिनिस्टर का, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पिछले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तक नहीं रहे थे। तो एक तो ये था उनका नेचर बहुत इम्पेचुअस, इम्पल्सिव, क्विक टू टेक ऑफेंस, ये सब था। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा वाइल्ड हॉर्स हो और उस पर बैठ गया, वो उसको कंट्रोल करना है। लेकिन वैसे उनका दूसरा साइड देखा है तो काफ़ी सॉफ्ट था। अब एक किस्सा बताऊं, मैं जा रहा था उनके साथ में दिल्ली से चंडीगढ़ बाई कार, तो अम्बाला में एक महिला लेट गई सड़क पे, रो रही थी, गाड़ी रोक थी। उसने कहा मेरा बेटा जो है उसको फांसी की सज़ा हुई थी और उसका पिटीशन, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया और 2 रोज में वो एक्सिक्यूट होने। तो बंसीलाल ने कहा इसमें अब मैं कुछ कर नहीं सकता, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया, दैट्स द लास्ट कोर्ट अपील। खैर बड़ी मुश्किल से उसको हटाया। फिर कहने लगे इसके लड़के ने जुर्म किया हो, जो भी किया हो, लेकिन उसको देखा जाए मदर के एंगल से, उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो खैर बात खत्म। एग्लोर अखबार में देखा कि वो प्रिजनर एस्केप कर गया जेल से। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, जेलर बस वहाँ से ट्रांसफर हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ।
एक बार एस के मिश्रा मुख्यमंत्री बंसीलाल के साथ राष्ट्रीय इंटीग्रेशन सम्मेलन में भाग लेने श्रीनगर गए। कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक मेजबान थे और उन्होंने सभी मेहमानों के लिए बेहतरीन भोज का प्रबंध किया था।
वहाँ पे जब पहला सेशन ब्रेक हुआ लंच के लिए, तो शाम आने में वो लंच अरेंज हुआ। कश्मीरीज जो है बड़े हॉस्पिटेबल, वहाँ गुस्ताबा ये वो सब डिशेज वगैरह लगे हुए थे। तो हम जब शाम आने में गए सबसे पहले बिफोर एनीबडी एल्स, तो उन्होंने देखा ये सब, वो कट्टर वेजिटेरियन, कहने मिश्रा जी कहाँ यहाँ आके फंस गए, कहने यहाँ से चलते हैं। हमने कहा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर रुक करके फिर निकल जाएंगे। कहने नहीं नहीं नहीं, अब कहाँ से निकले, मेन उससे तो निकलना, वो बाकी लोग उधर जा रहे थे। तो वो जो शामिया था उसके नीचे से घुस करके, और एक हेज था, तो हेज को पार करके हम लोग निकल गए। फिर वहाँ श्रीनगर में बंद पे हम लोग सैर करते रहे, कोई जगह ढूंढें जहाँ अच्छा वेजिटेरियन खाना मिले। तो चलते हुए एक गली में 4th मंजिल पे एक बोर्ड था, गुजराती भोजनालय। कहने लगे ये जैसे डेजर्ट में ओएसिस देखा किसी ने, तो हम लोग चढ़ के वहाँ गए। बहुत उनका मज़ा आया खाने में, और वो कॉन्फ्रेंस 3-4 रोज की थी। कहने लगे अब यहीं रोज़ आया करेंगे, तो मैं रोज़ उनके साथ मुझे ये करना पड़ता। उसके बाद जाते थे हलवाई था वहाँ, तो उसको लिख पे मुझसे कहने लगे कि मिश्रा जी लंदन चलेंगे तो आप हमारे साथ चलना। हमने कहा आप अकेले जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तो उनके समझ नहीं आया कि मैंने मना क्यों किया।
इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य ललित नारायण मिश्र ने एक बार बंसीलाल को पार्टी में बुलाया जिसमें राज कपूर भी एक मेहमान थे।
एल एन मिश्रा की वहाँ पार्टी थी जिसमें राज कपूर भी थे, तो वो इंट्रोड्यूस करने लग गए बंसीलाल को सारे गेस्ट को। अब बंसीलाल ने मूवी से कोई ताल्लुक नहीं, लास्ट मूवी देखी तो 1940 में डॉक्टर कोटनिस कमर कहानी। तो जब राज कपूर पाए तो इन्हें राज कपूर हैं, तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अरे राज कपूर, राज कपूर। करे अच्छा आपका बिजनेस है फरीदाबाद में? कहते नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा तो क्या करते हैं आप? कहते मैं एक्टर हूँ। अच्छा वहाँ गाँव गाँव नौटंकी में करते हैं? कभी क्या तुम्हें इतना नहीं मालूम?
हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना।
जब बंसीलाल केंद्र में रक्षा मंत्री बनकर आए तो मिश्रा को संयुक्त सचिव के तौर पर रक्षा मंत्रालय ले आए। उसी दौरान उनकी संजय गांधी से जोरदार झड़प हुई।
डिफेंस मिनिस्ट्री में था तो संजय गांधी ब्रह्मचारी के प्लेन फ्लाई करते थे, वो जाते थे जम्मू में मंत्रालय। तो उन्होंने बंसीलाल जो मिनिस्टर थे उनको रिक्वेस्ट भेजी कि मैं शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या करें? हमने कहा एयर चीफ से पूछ लेते हैं, मुलगांवकर एयर चीफ थे। उन्होंने कहा नहीं जा सकते क्योंकि हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं तो पीडीआर लेना पड़ता है, प्री डिटरमिन रूट, जो लंबा था। तो उन्होंने कहा जाके बता दो जाके। तो मैं जाके बताया कि नहीं हो सकता, यह पढ़ लो। पढ़ा, फेंक दिया, कहते यूजलेस नोट। हमने कहा जो भी है लास्ट वर्ड यू कांट फ्लाई। खैर टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो टॉपिक चेंज किया। उन्होंने कहा साहब जगमोहन लेबर कॉलोनी बनाना चाहते थे, कंटेनर एरिया ने आपने मना कर दिया, वहाँ पे एमिनेशन डिपो था, वहाँ नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा अगर आप इंसिस्ट कर तो मैं, आर्मी चीफ ने मना कर दिया था, मैं फिर भेज सकता हूँ। कि वो कहें हाँ तो हमें कोई तरह नहीं, कहें हाँ यू विल कम बैक टू मी सेम स्टूपिड आंसर। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा आई एम नॉट यूज टू दिस लैंग्वेज और मैं यहाँ अंडर ऑर्डर्स डिफेंस मिनिस्टर हूँ, अब आप मुझे नहीं देखो कभी। फिर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट फॉल कर गई एंड संजय गांधी वॉज बींग परस्यूड। तो डॉक्टर के पी माथुर थे फिजिशियन मिस्टर गांधी, उनकी लड़की की शादी थी तो उसमें संजय गांधी भी थे, आए थे। तो बाकी लोग अवॉइड कर रहे थे उनको क्योंकि नोटिस है भाई कौन मिला क्या सी आई डी वगैरह लगे थे CBI। तो मैं जाके उनको, हमने कहा कीप अप द फाइट, अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मिस्टर मिश्रा मैंने पता किया आपके फैक्ट सही थे, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर।
1977 में कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री देवीलाल ने अपने पहले ही संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि शशिकांत मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा। 18 महीनों तक उनको बुरी तरह से तंग किया गया, कई जांच आयोग बैठाए गए और उनके फोन टैप किए गए, लेकिन बाद में उन्हीं देवीलाल ने उन्हें अपना प्रधान सचिव बनाया। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है।
मैंने अप्लाई किया था स्टडी लीव के लिए, तो मैंने एक प्रोजेक्ट अप्रूवल के दिया था, वो अप्रूव हो गया था, अब स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के होते। तो मैं गया, मैंने पहले कहा अगर मैं अपॉइंटमेंट मांगूंगा देंगे नहीं, तो बगैर अपॉइंटमेंट के मैं, पता चला सोना एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है हरियाणा में, वहाँ वो थे। मैं वहाँ पहुँच गया, अपने छोटे ब्रदर के साथ ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैं वापस ना हूँ तो बेले बेले के इंतजाम कर लेना। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वो वहाँ लॉन में चारपाई पे लेटे हुए थे। पता चला क्या है, एकदम से बुला लिया, कहने लगे अभी मैं कह रहा था जिसने ये सब कुछ बनाया वो तो कभी आता नहीं, आप आ गए। अच्छा क्या पियोगे? तो हमने कहा चाय, नहीं 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 जूस पियो। फिर मुझसे पूछने लगे हरियाणा में ये पोस्ट खाली वो किसको लगाए हम? मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। हमने कहा मैंने सुना था देवीलाल अफीम खाते हैं, तो ये वो फेस तो नहीं है कि अफीम के? तो हमने कहा मैं एक दरख्वास्त लेकर आया, कहने छुट्टी चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहते नहीं वापस आ जाओ। हमने मैं तो पहले वापस आता, आप हमें जेल भेज रहे थे। कहने के नहीं नहीं मुझे पहले शक था तो मैं तफ्तीश किया, पता चला जितना अच्छा काम हुआ आपने किया तो वापस आ जाओ। हमने कहा जहाँ मर्जी है लगा दो। फिर कहने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए।
एसके मिश्रा कई बार देवीलाल के साथ विदेश यात्रा पर गए। एक बार उन दोनों ने हांगकॉन्ग से बीजिंग के लिए फ्लाइट ली,
जहाज पे बैठे थे, मैं उनके पिछले वो बैठा हुआ था। अब ये इतना मैं जानता था कि देवीलाल वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में एक बार मैं उनको ले गया था गे लॉर्ड्स रेस्टोरेंट में जहाँ उनको चिकन खिलाया था। तो लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि उनको शौक था ड्रिंक्स का भी। तो मैं पीछे बैठा था, सो गया था, आँख खुली, देखा एयर होस्टेस शैम्पेन पोर कर रही और पी गए। फिर थोड़ी देर में अपने वो उनका पिए था, कहने लगे वो छोरी को बुलाना थोड़ा अंगूर जूस हो ले। एंड ही पॉलिश्ड ऑफ दो बोतल शैंपेन की और कोई असर ही नहीं पी गए। फिर हम हांगकांग से चाइना गए। चाइना में बीजिंग में बाद में मुझे पता चला कि वो रोज़ जाते थे बार। तो एक रोज़ कॉन्फ्रेंस से हम लोग आए सीधे बार पहुँचे तो बार्टेंडर जो था साहब वही कहते नहीं आइसक्रीम चाहिए मुझे क्योंकि मेरे सामने ड्रिंक नहीं करना चाहते थे।
जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एसके मिश्रा को अपना प्रधान सचिव बनाया। मिश्रा बताते हैं कि चंद्रशेखर बहुत सादगी से रहते थे, वो जमीन पर सोते थे और उनके बेडरूम में कुछ कुर्सियां पड़ी रहती थीं जिन पर उनके दोस्त बैठ सकें। मिश्रा कहते हैं कि सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें उनका भाषण नहीं लिखना पड़ता था, वो हर भाषण एक्सटेम्पोर दिया करते थे।
आज़ादी आने के बाद हमारे देश की अनेक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। गरीबी का सवाल, भूख का सवाल, अशिक्षा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, लेकिन हमें ये बात कहने में एक गौरव का अनुभव होता है कि आज़ादी के बाद जो हमने संविधान बनाया उसमें हर मानव को, हर मर्द औरत को, चाहे पढ़ा हो बेपढ़ा हो, धनी हो गरीब हो, इस देश की तकदीर बदलने का अधिकार मिला हुआ है।
चंद्रशेखर ने एक बार मिश्रा के सामने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात कर कश्मीर में अगवा किए गए स्वीडिश इंजीनियर्स को छुड़वाया था।
कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स गुलमर्ग में किडनैप हो गए थे तो स्वीडिश एम्बेसडर मेरे पास आया, मैं ले गया चंद्रशेखर के पास। तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये तो उनका खैर। जब चले गए तो कहने लगे ये तो बहुत बुरा हुआ। नवाज शरीफ से बात करते हैं, टेलीफोन करते हैं और एग्जैक्ट वर्ड्स में कहते हैं भाई जान वहाँ बैठे बैठे क्या बदमाशी कर रहे हो। तो क्यों क्या हो गया? अरे कहने इंजीनियर ने आपको क्या बिगाड़ा? अंधपकड़ लिया ज़बरदस्त। कहने उसमें तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो मिलिटेंट से। कहें देखो भाई जान असलियत हमें मालूम, प्रेस में मुझे जानना नहीं। ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंसेशंस कल सुबह तक छूट जाने चाहिए और मुझे कुछ सुनना नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग पेपर में आया कि वो लोग एस्केप कर गए। तो लेटर मैंने पाकिस्तान एम्बेसडर को बताया, हाई कमिश्नर को बताया, कहने अच्छा व्हाट अ कोइंसिडेंस।
उन्होंने माना नहीं कि नवाज शरीफ का
हाँ।
शशिकांत मिश्रा के नज़दीकी दोस्तों में थे मशहूर चित्रकार MF हुसैन। वो उनके हर जन्मदिन पर उनका चित्र बनाया करते थे। एक बार मिश्रा ने हुसैन द्वारा मदर टेरेसा के बनाए चित्रों की एक प्रदर्शनी साइप्रस में लगाई।
साइप्रस में उस वक्त मैं ITDC में था तो हम एक होटल सेटअप कर रहे थे लिमसॉल में। तो मैंने सोचा कि इसको पब्लिसिटी के लिए मदर टेरेसा की एग्जीबिशन लगाएंगे कुर्सिया में। तो मैंने हुसैन से कहा कि अपने पेंटिंग्स वहाँ ले चलो। कहें ठीक है। प्रेजिडेंट साइप्रस के प्रियानो से मेला इनाग्रेट करने के लिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी पब्लिसिटी दी हुसैन को। अब जब एग्जीबिशन का डेट था उसके एक दिन पहले में कहीं हुसैन का नज़र ही नहीं आ रहा, हमने कहा क्या हो गया उनको। फिर शाम को लास्ट फ्लाइट पे आ रहे हैं बड़ा, तो हमने हुसैन पेंटिंग्स कहाँ, कहने अगले फ्लाइट से आ रहे हैं। हमने अगले कोई फ्लाइट ही नहीं है। मैं बहुत नाराज, कहने लगे चलो अच्छा खाना खाने चलते हैं। हमने कहा तुम खा लो जाके खाना, मैं नहीं खाता। एंड आई वॉज वेरी एंग्री। हमने कहा तुम नहीं आते तो मैं कह देता हुसैन को हार्ट अटैक हो गया, नहीं आ पाए। अब मैं क्या जवाब दूँ, प्रेसिडेंट को सबको बुला रहे हैं, उनके शक्ल पर कोई असर ही नहीं। खैर सुबह उठे वो मेरे कमरे में आए, कहने चलो ब्रेकफास्ट करने चल जाओ। खैर हमने कहा चलो। कहने वो एग्जीबिशन कहाँ होना था? हमने कहा ये एकेडमिक क्वेश्चन क्यों पूछे हो उससे क्या हुआ? कहने नहीं नहीं मैं किस हॉल में होना था। खैर हॉल लेके देखा कोई 13 कैनवासेज लटके हुए और पेंट ड्रिप कर रहा था कईयों में। रात भर उन्होंने पूरा एग्जीबिशन नए सिरे से वो किया।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
आपको बता दें कि ये विवेचना आप सुबह के कार्यक्रम यानी कि विश्व भारती में दोबारा सुन पाएंगे। और सूखा पर जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसमें आज की जो श्रृंखला है, आज की जो कड़ी है, उसे हम घटना चक्र में प्रसारित करेंगे। IPL 9 में पुणे में आज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है, जहां पुणे के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। कार्यक्रम में से पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, पत्रकार स्वपन दास गुप्ता, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में फामला गांव में लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसे नए सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि नाइजीरिया की सेना ने उत्तरी शहर जारिया में बीते साल सामूहिक रूप से लोगों की हत्याएं की थी। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।